نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں سے پیدا کیا کہ جس نے زندگی میں پیش آنے والے ہر موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی. ہم آج مختصر طور پر جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سفر کا مہینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس انسانیت کے لیے ایک رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ایک ایسی برکھا برسائی کہ جس نے اس دور کے پھیلے ہوئے تمام تعفن، تمام خرابیاں، گندگیاں ختم کر کر معاشرے کی تدخیر کی، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود رحمت بنا کہ باپ دادا کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر، کہیں دین اور مذہب کے نام پر، کہیں کلچر کے نام پر، کہیں فن کے نام پر مکہ والوں نے جو کچھ بھی خرابیاں پھیلائی ہوئی تھیں ایک ایک کر کے اس کی اصلاح کی گئی، اور آپ کے یہ خصائص، آپ کی یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کی. میں جب بھی یہ آیات پڑھتی ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو رحمت ثابت کرتے ہوئے آپ کے آنے کے بعد دنیا کو جو خیر ملی اس کا تذکرہ، تو میرا دل بوجھل بھی ہونے لگتا ہے کہ ہم کیسے امتی ہیں کہ جس نبی کے دنیا میں آنے کے بعد جہالت ختم ہوئی، بے حیائی ختم ہوئی، اور اپنے نفس کی اتباع کو انہوں نے دین کا نام دے کر جو دین معروف کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے دور کر دیا. لیکن آج پھر ہم مسلمان اسی دور جاہلیت میں آ گئے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پھر وہی رسم و رواج، وہی طور طریقے جو اس دور کے لوگوں کے تھے وہ ہماری زندگی میں اس طرح مل گئے کہ جیسے دودھ میں پانی مل جاتا ہے. اور آج ہمیں اس دین جس کی تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں، اور وہ دین جو آج اپنے ارد گرد پھیلا ہوا نظر آتا ہے، زمین و آسمان کی دوری دکھتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے ناطے سے عربوں میں کیا رواج تھے، کیا طریقہ کار تھے، اور اس مہینے کو سفر کا مہینہ کیوں کہتے ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ مہینے 12 ہی ہیں. سورۃ توبہ کی آیت میں یہ بات ہر مہینے کے شروع میں ہی تقریباً بات آ جاتی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں مہینے 12 ہی ہیں جس میں سے 4 حرمت والے اور باقی عام مہینے ہیں. سفر کا مہینہ اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو اسلامی کیلنڈر کے دوسرے مہینے پہ پڑتا ہے. سب سے پہلے مہینہ ہے محرم کا. محرم کے اوپر ہم بات کر چکے، اور محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کی بھی کا آغاز تھا، مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز تھا. فتح ہجرت مدینہ کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو ہی اسلامی کیلنڈر کے آغاز کا مہینہ بنایا، اور چونکہ وہ حرمت والا مہینہ بھی تھا اس کی بہت ساری مختلف چیزیں ہم حرمت کے مہینے میں دیکھ چکے محرم کے ناطے سے. لیکن محرم کے بعد اب دوسرا مہینہ سفر کے نام پہ ہمارے سامنے ہے. سفر کا لفظ اگر ہم اپنے اردو کے پروناؤنسیشن کو ٹھیک کر کے پڑھیں تو یہ سین سے نہیں بلکہ سوات سے آتا ہے. سوات، فا، را اس کا روٹ ہے. اردو میں ایک لفظ سفرا کی بیماری آپ نے سنا ہوگا، لفظ اسی سے ہے، یہ سفرا کا مریض بھی ہوتا ہے. بیسیکلی سفر کے لفظ کے اندر خالی پن کا معنی آتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کو سفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجوہات میں مفسرین نے بہت ساری وجوہات دی، جس میں کچھ چیزیں اس دور کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے، کچھ ڈکشنری کو سامنے رکھتے ہوئے دکھتی ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے. مثلا پہلی وجہ سفر کے مہینے کو سفر کہنے کی کیا تھی، کہ محرم تک 3 مہینے حرمت والے پورے ہوتے تھے، जिसके अंदर ये लोग बहुत सब्र कर चुके होते, और इसके बाद से फिर ये अपने घरों से इस तरह से निकलते कि कोई भी घर में ना रहता, घर खाली रहते। मुसलसल हुरमत के महीनों के बाद जब महीना आता तो जंगो जिदाल के आदि ये लोग लूट मार के लिए निकल पड़ते, घर खाली होते। जब मकान खाली हो जाते तो कहते सफर अल मकान, यानी मकान खाली हो गया। इस वजह को हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी ने पसंद किया। वो कहते कि सफ़र के महीने को बरकतों से खाली होने के मानों में भी ये लोग लेते थे, और ये उनका वो गलत अकीदा था जिसकी बुनियाद पे इस महीने को वो सफ़र कहते थे। दूसरी एक वजह सफ़र के महीने को सफ़र कहने की, सफ़र नाम की एक बीमारी भी है जिसमें इंसान खाता जाता है और उसकी भूख ख़त्म नहीं होती, इसको जूल बकर कहते हैं। इसी तरह एक तीसरी वजह यह है कि सफ़र नाम का एक कीड़ा होता है जो पेट का कीड़ा कहलाता है, जैसे सांप या छोटे छोटे कीड़े पेट में होते हैं। जिस बंदे को ये लाहक हो उसकी मौत वाक़े होती है, और ख़ारिश से भी ज़्यादा तकलीफ़ देह ये बीमारी होती है। ये सारे वो इश्यूज़ थे जिसकी बुनियाद पर सफ़र का महीना मारूफ था। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मारूफ रिवायत में कहा कि वला सफ़रा, कि सफ़र की कोई भी हकीकत नहीं। मुराद ये कि बीमारी मुतदी नहीं होती बल्कि अल्लाह के हुक्म के साथ आती और जाती है। इसी तरह एक चौथी वजह भी है सफ़र के महीने की, और वो क्या है कि अरब लोग जो थे एक साल मुहर्रम के महीने को सफ़र का महीना कर देते और दूसरा साल सफ़र के महीने को मुहर्रम का महीना कर देते, क्योंकि वो मुसलसल रह नहीं सकते थे लड़ाई के बगैर। तो जब वो मुहर्रम का महीना आता तो कहते नहीं, इस साल ये मुहर्रम नहीं, ये सफ़र है, और सफ़र की जगह मुहर्रम। और इसकी कई रिवायात है जिसकी इस वक्त गुंजाइश नहीं, कि आके अपने बुतों के नाम पर ये अनाउंस करते थे। इनका जो भी कोई बड़ा उस दौर का सरदार होता था वो आके अपने मारूफ बुत का नाम लेता और कहता कि इस साल हमारा फला खुदा ये कहता है कि इस साल सफ़र जो है वो मुहर्रम में होगा और मुहर्रम सफ़र में होगा। इस तरह से वो इस काम को करते थे जिसके नतीजे से वो फिर बाद में गलत चीज़ों को करते थे। एक और भी सफ़र के महीने में इनकी तारीख़ लिसानुल अरब किताब है डिक्शनरी की, उसमें मिलता है कि इस महीने में कबाइल के ख़िलाफ़ चढ़ाई की जाती थी और इनको जो इनको मिलता उसे माल से खाली कर देते, यानी सारा माल असासा छीन लेते और वो बग़ैर किसी सामान के रह जाता, तो इससे भी उसको सफ़र यानी खाली कहा जाता। एक छठी वजह भी इन्हीं की किताबों में मिलती है, और वो क्या है कि दौरे जाहिलियत में सफ़र को मनहूस समझते थे, क्योंकि ज़िलहज और मुहर्रम हुरमत वाले महीने थे, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाते थे। लेकिन इस महीने के साथ ही क्राइम्स और की केसेस शुरू हो जाते थे, तो गोया कि अपने इस अमल को बुरा कहने की बजाय ये सफ़र के महीने को मनहूस समझने लगते। है ना लोगों की बेसमझी की बात, अमल अपने बुरे हैं और इस तरीके से वो इन कामों को करते। तो ये तो है इसकी वजह तस्मिया, इसका नाम ये क्यों है। दूसरी बात है कि इस महीने के अंदर वो करते क्या थे, मुख्तलिफ किस्म के वहम पाले हुए थे उन्होंने। इन महीनों के अंदर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की हालत में महसूस करते। सबसे पहली बिदत तो इसकी नसी थी, वही जो आगे से पीछे कर लेना और महीने से आगे को पीछे करना। सूरह तौबा में अल्लाह सुभान तआला फरमाते हैं, इन्नमा नसीउ ज़ियादतुम फिल कुफ्री युदल्लु बिहिल लज़ीना कफरू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन, के बेशक महीनों का आगे पीछे करना कुफर में ज़्यादती है। इसलिए जो लोग गुमराही में डाले जाते हैं, जो काफिर हैं, एक साल तो इसे हलाल करते हैं और एक साल इसी को हुरमत वाला कर देते हैं, और अल्लाह ने जो हुरमत रखी है इसके शुमार में तो वो मुवाफ़क़त कर लेते हैं, फिर इसको हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने हराम बनाया। तो इनके ये बुरे काम इनको खूबसूरत करके दिखाए गए, और कुफ्फार कौम की रहनुमाई अल्लाह ताला नहीं फरमाता। तो आप देख सकते हैं कि हर दौर की कुछ बिदात, कुछ बदअमलियाँ होती हैं, वो उस दौर के रिवाज और रस्म व रिवाज के नाते से होती हैं। वालदैन, बाप दादा, बौजदाद के नाम पर इस किस्म की बातें करके वो खुशी महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी तमाम चीज़ों से मना कर दिया। सही बुखारी की रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया कि इंसान महीनों को आगे पीछे करे। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि वो ये समझते थे कि हज के महीनों में उमरा करना ज़मीन में बड़ा फजूर पैदा करने के काबिल है, यानी पसंद नहीं करते थे इस महीने में उमरे को करना, और मुहर्रम को सफ़र बना लेते और कहते कि ज़रा ऊँट थके हुए थे ठीक हो जाएं, इसके असरात मिट जाएं तो फिर उम्रा होगा। इस किस्म की खुराफात को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। आज आप अपने आप को इन चीज़ों को सुनाते वक्त ज़रा अपने आज के दौर के रस्म व रिवाज के साथ भी टैली करते जाइए। आज हम में भी तो कई ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है, ना हम ऐसी चीज़ों को कोई समझते और सिर्फ ये सोच करके वक्त का रिवाज है, फैशन है, शादी की रस्में हो, पैदा होने की रस्में हो, मरने जीने की रस्में हो, किसी का नया घर लिया उसने तो उसकी रस्म आ गई, हज पे गया तो उसको क्या तोहफा तहाइफ देना है उसकी रस्म, किसी के घर गए तो तोहफा लेके जाना है, कहीं आएंगे तो तोहफा लेकर आएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर भी खून की तरह रच चुकी हैं। हम उसको दीन ना भी समझ कर करें लेकिन दुनियावी एतबार से बाज़ दफ़ा इस किस्म की रसूमात इंसान का जीना दोभर कर देती हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं किया गया। इस्लाम दीन फितरत है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी किसी चीज़ की कोई इजाज़त नहीं दी कि जिससे हमारा जीना मरना दूसरों के लिए भी मुश्किल हो जाए। ख़ास तौर पे जो अब माहे सफ़र की कैफियत दिखती है, हमें उन लोगों को तो इतना नहीं टच करने की ज़रूरत, लेकिन आज हम मुसलमान उसी नबी की उम्मत के कायल, आज हम भी इस मुहर्रम सफ़र के महीने के अंदर किस कई किस्म की बिदात का शिकार हो चुके, इसको मनहूस समझ लेते हैं और कभी कुछ रातों को मनाने लगते हैं, कुछ दिनों को मनाने लगते हैं। मसलन कुछ चीज़ें जो मुसलमानों के अकायद से मिलती हैं, उसमें पहली चीज़ तो क्या है, कहते हैं कि इस महीने में मुसीबतें और आलाम की हवाएं चलती हैं और गम और तकलीफ इतने ज़्यादा आते हैं कि एक साल में 10,80,000 बलाएं और मुसीबतें नाजिल होती हैं और उनमें सिर्फ एक महीना सफ़र में 9,20,000 बलाएं नाजिल होती हैं। जी, ये मुसलमानों में से बाज़ मुसलमानों का अकीदा है। इसी तरह बाज़ लोग इसको 13 तेज़ी का महीना कहते हैं, वो कहते हैं ये मनहूस महीना है, ख़ास तौर पे 13 सफ़र जब आती है तो उसके बाद के जो दिन हैं वो मनहूस हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये महीना रहमतों और बरकतों से खाली है इसीलिए ये मनहूस होता है। इसी तरह एक और बिदत इस महीने की आज के दौर में जो देखी गई कि बाज़ लोग जब सफ़र की 25 तारीख को अपने किसी काम से फारिग होते तो इसकी तारीख लिखते हुए कहते थे खैर के महीने 25 तारीख को ये काम ख़त्म हुआ। अब ये बिदत का इलाज बिदत के ज़रिए से है ना, कि ना तो महीना खैर का होता है ना शर का होता है, असल में लोगों के अपने अमल बुरे होते हैं। तो किसी महीने को बरकत का कहना, खैर का कहना, मनहूस कहना, ये अपनी जगह एक बिदत है। फिर एक और इस महीने के नाते से अमल देखा गया कि नए शादीशुदा जोड़ों को इस महीने के इब्तदाई 13 दिनों में एक दूसरे से अलग रखते हैं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखने देते, हत्ता कि आम शौहर और बीवी को भी 3 दिन तक एक दूसरे से अलग रखा जाता है कि कहीं वो एक दूसरे के लिए मनहूस ना करार दिए जाए। अब देखिए कि हम भी दूसरों के साथ रहते हुए इन चीज़ों के आदी हो गए। इस्लाम तो किसी के साथ रहने या जुदा होने को मनहूसियत या बरकत नहीं कहता, हर बंदे की अपनी मनहूसियत उसके अपने साथ लगी हुई है। कुल इंसान नलज़म ना हो तो आयरा खूफी उनकी व नुखरिजुलहू यौमल क़ियामत किताब यलक़ाहु मंशूरा। सूरत बनी इसराइल तो हमें कुछ और ही ख़बर देती है कि हर इंसान की नहूसत और उसकी बुराई और भलाई तो खुद उसके अपने साथ लगी हुई है। हम अपने आमाल को बुरा क्यों नहीं कहते, हम अपनी बेपर्दगी को बुरा क्यों नहीं कहते, हम अपने फैशन को और हम अपने वक्त ज़ाया करने को बुरा क्यों नहीं कहते। हम जितनी तेज़ी से बेदीन होते जा रहे, जितनी तेज़ी से हमारे ज़िंदगी तकल्लुफात का शिकार हो रही, बहू बेटी माँ बहन कोई फ़र्क नहीं रहा, बाप बेटी की हया नहीं रही, हम इसको मनहूस क्यों नहीं कहते। हम क्यों अपनी महरूमियों का जो मुर्दा है वो दूसरों के सर पे डालने लगते हैं। लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ें इसको सख्ती से इसको लेट डाउन करना चाहिए, पीछे इसके नहीं देखना चाहिए। फिर इसी तरह एक और चीज़ इस महीने के नाते से क्या है कि मुहर्रम के महीने में और सफ़र में कोई शादी या खुशी का काम लोग नहीं करते। क्यों? कहते हैं मुहर्रम में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो शहीद किए गए और सफ़र में हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हो का इंतकाल हुआ, और इन दोनों वाक़यात की वजह से इन महीनों को शादी और ख़ुशी के लिए गैर मुनासिब समझते हैं। हालांकि किसी की फौत, किसी के फौत होने, किसी की शहादत, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। ना कोई रबी अव्वल के महीने को मनहूस समझ सकता है कि उसमें अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई, ना जमादी अव्वल को इसलिए मनहूस समझा जा सकता है कि इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, और ज़िलहज इसलिए मनहूस समझा जाता था कि इसमें खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक और खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। बाज़ लोग रमज़ान को इस वास्ते से मनहूस समझते हैं कि इसमें हज़रत अली की शहादत हुई। تو آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء کرام صحابہ کرام کی وفات اور شہادت کے اگر دنوں کو آپ منحوس قرار دیں گے تو پھر 12 مہینوں میں کون سا مہینہ اور کون سا دن منحوست سے خالی رہے گا؟ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، نہ تو محرم کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے منحوس ہے اور نہ حضرت حسن کی وجہ سے سفر کا مہینہ منحوس ہے. انسان کو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح ماہ سفر کی بدعت میں ایک بدعت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے کے آخر میں مغرب اور عشاء کے درمیان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور علیہ السلام کے اوپر سلام والی آیات کو لکھ کر رکھتے ہیں، یعنی ایک کاتب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ایک کاغذ پر ہر وہ آیت جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلام والی بات کی ہے ان کو لکھتے ہیں. جیسے قرآن پاک کی کچھ آیات ہے نا، مثلاً سلام ان قول میں رب الرحیم، سورت یاسین کی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور اسی طرح سورہ قدر میں آتا ہے سلام ہی حت مطلع الفجر. تو یہ ساری سلاموں والی آیتوں کو جمع کرتے ہیں، ایک پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں، پھر اس اعتقاد سے اس کو پیتے ہیں کہ اس سے ان کی مصیبتیں دور ہوں گی، اور اس پانی کو تحفے کے طور پہ دوسروں کو بھیجتے ہیں. آپ بتائیے اس سے کیا ہوگا؟ حیرت کی بات نہیں ہے. پھر ایک جو بہت ہی زیادہ عجیب بدعت ہے اس مہینے کے ناطے سے، اور خاص طور پہ بدھ کے دن سے اور ماہ سفر کے آخری بدھ کو، اور وہ کیا ہے؟ دمشق کے لوگ بدھ کے روز مریض کی عیادت کو منحوس اور بدفعل سمجھتے تھے. چنانچہ بدھ کے دن عوام اور خواص اور عام رشتہ داروں کے لیے مریض کی عیادت کرنا ممکن نہیں. اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے کہ ہر بندہ جو کام کرتا ہے نا غلط، اس کی دلیل بھی ساتھ رکھتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت ہے نا، یوم الاربعاء یوم النقص مستمر. کہتے ہیں بدھ کا دن مسلسل نخست کا دن ہوتا ہے. ایک قوم پر عذاب کی بات ہے تو اس میں یوم ناخص مستمر، سورہ قمر کی غالباً آیت ہے، اس کا حوالہ ہے. تو کہتے ہیں وہ بدھ کا دن تھا تو لہٰذا یہ دن منحوس ہوگا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ بدھ کے دن کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں لیکن ضعیف، اور کوئی ان کی بات نہیں، یعنی نہ یہ ضعیف ہے نہ تو یہ کوئی برکت والا دن ہے اور نہ یہ منحوس دن ہے. یہ صرف لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو پورا دین نہیں سمجھتے نا وہ پھر اس طرح کا رسمی رواجی دین کرتے رہتے ہیں. یہ ہوگا، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بدھ کے دن کسی مریض کی عادت کی تو جمعرات کو وہ اس مریض کی عادت کرے گا. مراد یہ ہے کہ بدھ کے روز اگر مریض کو دیکھنے گیا تو وہ مریض اس کے بعد دوسرے دن جمعرات کو مر جائے گا اور اس کی زیارت جمعرات کو قبرستان میں ہوگی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ کیا بدھ جمعرات یا ہفتے کے روز سفر کرنا مکروہ ہے، یا ان دنوں میں کپڑوں کا کاٹنا، سینا، سلانا یہ مکروہ ہے، یا پھر ان تاریخوں میں شوہر بیوی کا ملنا مکروہ ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بچے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے ان سارے سوالوں کے جواب میں کہا کہ ایسے تمام عقائد اور خیالات باطل ہیں، اور انسان جب استخارہ کر کے کوئی بھی مباح کام کرے گا، جس وقت بھی کرنا آسان ہو تو وہ کام کر سکتا ہے. کسی بھی دن کپڑے کی کاٹ چھاٹ، سلائی چھت وغیرہ یہ مکروہ نہیں، اور اللہ کے نبی نے بدفعلی سے منع کیا. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ وہ لوگ جن کے دل اسلام کے عقیدے سے پوری طرح روشن نہیں ہوتے، وہ اس قسم کی سیاہ چیزوں کو اپنی زندگی میں اتنا حصہ بنا لیتے ہیں کہ بعض دفعہ تو وہ لوگ اللہ کی کتاب سے خیر لینے کی بجائے صرف ٹونے ٹوٹکوں کی کتاب بنا لیتے ہیں. حضرت معاویہ سے ایک روایت تک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے نبی سے، ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے فرمایا تم لوگ کاہنوں کے پاس مت جایا کرو. انہوں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ تو بدفعلی بھی لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے تمہیں باز نہیں رہنا چاہیے. تو اب آپ دیکھیے کہ اپنے دل میں جب کسی کے لیے کوئی برا خیال ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے برا سوچنے لگتے ہیں. تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے ایک بڑے مقصد کے ساتھ انسان جیے، اور وہ کام کرے جس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، خیر ہے. پھر رہے گی بات ماہ سفر کی آخری بدھ، تو اس کے بارے میں ایک تصور یہ بھی دیتے ہیں کہ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے شفا پائی تھی اور آپ نے غسل صحت فرمایا. اسی لیے بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کو کاروبار بند کر کے عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، بعض سیر و تفریح کے لیے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ کی خوشی کے جلوس مناتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی تو نہیں ملتا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز، جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ سن 11 ہجری میں سفر کے مہینے کی جب 2 راتیں باقی رہ گئی تھیں بدھ کے روز، تب سے شروع ہوا۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے۔ 12 ربیع الاول سوموار کے دن چاشت کے وقت آپ کی روح جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ تو ایسی باتوں سے ہوتا کہ بالفرض اگر یہ ایسا دن بھی ہو تو ہمیں تو پھر بھی نہیں یہ کہا گیا کہ آپ اس کو منحوس کہو۔ آپ دیکھیے کہ نفس سلم ہوں یا کوئی بھی نیک انسان ہو، جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے تو بہت اچھی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ جو بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، غم ادھر ہوتے ہیں وہ تو وہاں نہیں ملتے۔ تو آپ کیسے کسی کے دنیا سے جانے کو اپنے لیے اور اس کے لیے کوئی صدمے کا یا کوئی سوگ کا دن بنا سکتے ہیں؟ اس لیے ایسی تمام چیزوں میں انسان کو اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک بامقصد انسان ہوتا ہے، اس کا دل دماغ دوسروں کی نفرت سے پاک ہوتا ہے، کوئی بدگمانی، کوئی ایسی چیز وہ اپنے دل میں پال نہیں سکتا، اور وہ اپنے آپ کو ہی اتنا نہیں اہم سمجھتا کہ مجھے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری زندگی اکثر اپنے بارے میں سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اب یہ ہوگا، اس سال میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ شادی ہوئی ہے تو کیسا ہوگا، میں نے یہ گھر خریدا ہے تو کیا ہوگا، یہ کپڑے میں نے خریدے ہیں میرے لیے کیسے ہوں گے۔ میں تو سمجھتی ہوں بندہ مومن اپنی ذات کے بارے میں تو سوچتا ہی نہیں ہے، جو ہوگا دیکھیں گے، جو کل ہوگا دیکھ لیں گے، ابھی تو ہمیں یہ ہے۔ ہمیں دین اسلام کے ناطے سے کتنا فکر ہے، ہماری زندگی میں کتنا یہ غم لگا ہوا ہے کہ یہ سال اسلام کے لیے منحوس ہے کہ نہیں، یہ اسلام کے لیے ببرکت ہے کہ نہیں، جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں، جو طور طریقے ہمارے دنیا میں جینے کے ہیں، کیا یہ اسلام کے لیے منحوس تو نہیں ثابت ہو رہے؟ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے خوش ہوں گے؟ ہم ایسے بالکل نہیں سوچتے، اور رہ گئی چھوٹی چھوٹی باتیں، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ توڑ کے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو کہیں تو کھانے پینے کے ڈھنگ ہیں، کہیں چھٹیاں منانے کی باتیں، 4 دن نہیں گزرتے چھٹی کا دن آتا ہے۔ آپ کوئی کام کہہ کے دیکھیں اپنے ملکوں میں، اب عید کی چھٹیاں ہیں، اب محرم کی چھٹیاں ہیں، اب شبرات کی چھٹیاں ہیں، اب سفر کی چھٹیاں ہیں، اب ربیع الاول کی چھٹیاں ہیں، اور کوئی دن ہے اللہ کا کہ آپ کام کہیں اور اسی دن وہ کام ہو جائے؟ جب ہماری زندگی اتنی بیکاریوں میں گزر جائے گی تو آپ بتائیے کہ پھر ہمیں خیر کہاں سے مل جائے گی؟ اسی طرح بعض دفعہ کچھ لوگ محرم کے سفر کے مہینے میں کچھ خاص قسم کی عبادات بھی کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مثلا ایک فتویٰ ہے پورا بلکہ، کہ بعض علماء اس ایک نفل نماز پڑھتے ہیں جو سفر کی آخری بدھ کو چاشت کے وقت ایک ہی سلام کے ذریعے 4 رکعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت کے اندر 17 بار سورت فاتحہ، کوثر، 50 بار سورہ اخلاص، اور ایک ایک بار معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھتے ہیں، اور یہ عمل ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ پھر جب سلام پھیر لیں تو اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کو 360 بار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جوہر الکمال کو 3 بار پڑھا جاتا ہے، پھر سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کے ذریعے نماز کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر فقیروں مسکینوں میں روٹی وغیرہ بانٹتے ہیں، اور اس آیت کا صدقہ، یہ سب کچھ آخری بدھ کو کرتے ہیں سفر کے مہینے کو، اور کہتے ہیں کہ اس سے ہم پہ آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ کہتے کہ ایسے لوگ کہ ہر سال 3,20,000 آفتیں نازل ہوتی ہیں، سب کے سب ماہ سفر کے آخری بدھ کو ہوتی ہیں، یہ دن سال کا سب سے مشکل دن ہوتا ہے، لہٰذا جو یہ نماز پڑھ لے اس کیفیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دن میں تمام نازل ہونے والی پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور اس سال اس کے گرد کوئی مصیبت اور آفت چکر نہیں لگائے گی۔ آپ یہ بتائیے کہاں سے آئی نماز، کس کے پاس اس کا حوالہ؟ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، سلف صالحین پڑھتے تھے، چاروں ائمہ کرام پڑھتے تھے، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ تو یاد رکھیے، من عمل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں تو وہ کام کل مردود ہوگا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے ایسی چیزوں کو ہمیشہ ڈسکریج کیجئے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہماری عام فی زمانہ کم پڑھے لکھے مڈل ایج کے لوگ کس قسم کی عبادات کا شکار ہیں۔ کتابیں دعاؤں کی، وظیفوں کی رکھی ہوتی ہیں، کبھی پڑھ کے اس پہ پھونک رہے ہیں، کبھی گٹھلیوں پہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ پڑھیں، کرے کوئی جو بھی کرے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن हम अमल की बात करें, हम देखें कि इसमें हुआ क्या था। आइए ज़रा माहे सफ़र में होने वाले चंद वाक़यात को भी एक नज़र से देखें और फिर अपने हाल पे शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे महीने तो सिर्फ इसी किस्म की रस्में खिलाते पिलाते और मनाते गुजर जाते, जबकि माहे सफ़र के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितने गज़वात और सराया हुए। सबसे पहले गज़वा अबवा हुआ, अबवा के मुकाम पर एक गज़बा हुआ। नाम अबवा सुनकर आपके जहन में यकीनन आना चाहिए कि नबी सल्लम की वालदा माजिदा जो थी वो इसी जगह पे फौत हुई थी, मदीना के करीब की एक जगह, और वहाँ पे दफन थी। तो वहाँ पे एक छोटा सा गज़बा हुआ था जिसको गज़बा अबवा के नाम से जाना जाता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ। 12 तारीख थी सफ़र की, सन 2 हिजरी में हुआ। फिर उसके बाद दूसरा मौका जो इस महीने में हुआ वो खैबर की जंग हुई थी, सन 7 हिजरी में। जाके पढ़ के देख लीजिए, सिर्फ आज आप मुसलमान खैबर की जंग के हालात, उसके सरकमस्टांसेस, उसकी वजूहात और उसके सीक्वेंसेस इस पढ़ लें तो आज ग्लोब में हमें जो कुछ दिखता है वो सब समझ आने लगेगा। तारीख से हमारा ताल्लुक़ टूट गया, हमने वो कहानियाँ तो बिल्कुल ही भुला के छोड़ दी, किस तरीके से इस्लाम इतनी मुश्किलात से फैला। तीसरा गज़वा जो इस महीने में हुआ ये बहरे माउना का वाक़या हुआ था। जो लोग सीरत जानते हैं वो लफ्ज़ सुनते ही दुख महसूस करते हैं, किस तरह धोखे से हुफ्फाज़ कराम को शहीद किया गया। 1 महीना तक अल्लाह के नबी सल्लम उस तकलीफ़ को महसूस करते के लिए उनके लिए बददुआ करते रहे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी तो अमली ज़िंदगी थी, आपने तो शायद ही कोई महीना अमन और चैन का अपनी ज़िंदगी में गुजारा हो। फिर इसी तरह कबीला खसम की जानिब 9 हिजरी में कुतबा बिन आमिर की क़्यादत में नबी सल्लम ने एक सराया भेजा कि जिसके अंदर मुसलमानों का मुकाबला किसी दूसरे के साथ हुआ। आपकी ज़िंदगी में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि ये महीना आ गया, जंग करोगे, मनहूस होगा, फिर हम हार जाएंगे। नहीं, फिर आप देखिए कि दूसरे बातों को तो छोड़िए, खुशियों के मौके कितने हुए। सफ़र के महीने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जो थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से हुई थी। 2 हिजरी थी, सफ़र का महीना था। अब आप बताइए, आज आप शादी ना करें सफ़र के महीने में अपने बच्चियों और बच्चों की, और अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी की शादी हुई और कितना प्यार रहा, कितना अच्छा घराना निभा, कोई मनहूसियत उसमें नहीं हुई, कोई हम इसमें नहीं समझते कि ये किस तरह का मामला हुआ और कैसे हुआ हैं। फिर इसी तरह खुबैब इब्ने अदी जो थे ये शहीद हुए थे सफ़र के महीने में, 4 हिजरी में मक्का में। फिर इसी तरह जैद इब्ने एक सहाबी थे, जैद इब्ने दान दा, 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 यानी एक सहाबी थे, वो भी शहीद हुए थे इस जंग में, इस महीने के अंदर। तो एक आम महीना था, इसके बारे में किसी किस्म की बातों को सोचना करना ये अपने ईमान का सौदा करने के बराबर है। बास लोगों ने इस महीने के फ़ज़ाइल में बहुत सारी अहादीस भी घड़ी, मसलन कुछ लोग इसके बारे में जो ज़यीफ़ और मौजू रिवायात पेश करते हैं, मैं आपको उसमें से सिर्फ इस नोट इस तौर पे चंद बातें बताना चाहूँगी कि कहीं आप ऐसी कोई किताब में या अखबारों के आर्टिकल में पढ़ें तो मत सोचिएगा कि ये ठीक है, बल्कि वह अहादीस अब इल्मी सतह पर मौजू अहादीस साबित हो चुकी हैं। एक रिवायत जो कि सफ़र के महीने के गुजरने की खुशखबरी दे, मैं इसको जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या मतलब, यानी आप सोचिए कि इस हदीस के अल्फाज में कितना इबहाम है। अब ये सही हदीस नहीं है, जितनी हदीसें इस महीने की बारे में और बुध के बारे में वो सारी ज़यीफ़ और मौजू हैं। इसी तरह इब्ने क़य्यम रहमहुल्ला ज़यीफ़ और मौजू रिवायात की पहचान के असूल पर एक बात करते हुए लिखते हैं कि जब भी किसी हदीस में फ़लाँ फ़लाँ तारीख का ज़िक्र हो, जैसे इनका कॉल, जैसे जब फ़लाँ फ़लाँ साल हो गया, ऐसा हो गया और ऐसा हो गया तो ये हादसा हुआ, तो कहते हैं कि समझ लीजिए कि किसी सख्त झूठे का कॉल है, कि जब मुहर्रम में चांद लगेगा, चांद ग्रहण लगेगा तो महंगाई कत्लो गारत करी और बादशाह हो हुक्मरान की मशगूलियत बढ़ जाएगी, और जब सफ़र में चांद ग्रहण लगेगा तो ऐसा ऐसा होगा। कहते हैं कि इस तरह की हदीसें जो हैं ये मौजू और मनघड़त किस्म की अहादीस होती हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कोई मकसद दे, बेकार जिंदगियां गुजार गुजार के हमने ख़ुद को कहाँ ज़ाया कर दिया। अल्लाह ताला ने कई किस्म की खुराफात से बचाया आपको इस किताब से जोड़ के। दुआ करें कि आप ख़ुद भी इस किताब से जुड़ें, इसको समझें, इसके साथ ज़िंदगी बसर करें और बामकसद ज़िंदगी हो, फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी की असल वैल्यू क्या है। आपको तो ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल बच्चे वाली और खेल खिलौने की लगेंगी जो लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में रखी हुई हैं। और लोग क्या सोचते हैं कि ये चंद बातें कर करा के दीन के नाम पे कुछ पढ़ लेंगे। कोई चनों पे कोई चीज़ पढ़ता हुआ देखा जाता है, कोई कहता है ये महीना मर्दों पे भारी है, कोई महीना आप औरतों पे भारी कर देते हैं, किसी को बच्चों पे भारी कर देंगे। तो आप बताइए फिर हमारी जिंदगियों से बदशगुनियाँ कैसे निकलेंगी। सिर्फ सफ़र ही के महीने को ना ले, आप आम दिनों में देखिए कि आज उम्मत मुस्लिमा किस किस्म की बदशगुनियों का शिकार हो गई। काली बिल्ली रास्ता काट गई, चलो आप परेशान हो रहे हैं, क्या करो, रास्ता छोड़ो कि ना छोड़ो, सफ़र का इरादा तय करो कि ना करो, जाते जाते किसी ने पीछे से बुला लिया, चलो जी अब काम ख़राब होगा। हाँ कितने मारूफ पढ़े लिखे लोग जो है वो अपनी बीवियों से सिर्फ इस बात पे नाराज़ हो जाते हैं कि जब मैं घर से निकल पड़ूँ तो मुझे पीछे से ना बुलाया करो क्योंकि ये मेरे लिए मनहूस है। अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायत है मुसनद अहमद में, चंद लफ्ज़ों की रिवायत है लेकिन हमें यह बहुत ही अच्छा अकीदा सिखाती है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा इल गैरुक। मैं दोहराती हूँ अगर आप ये याद कर सकें, ये बड़ी प्यारी दुआ है, आपके दिल से हर किस्म की बदफाली और घटन निकल जाएगी। मुसनद अहमद के ये अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक, ए अल्लाह तेरी दी हुई भलाई के सिवा कोई दूसरी भलाई नहीं, यानी भलाई तू ही देगा, वला तैरा इल्ला तैरुक और तेरी फाल के अलावा कोई फाल नहीं, वला इलाहा गैरुक और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। कभी किसी की बात लगे फलां की ज़ुबान काली है जी उसकी बद्दुआ लगती है, वो छोटे सर वाला है उसकी दुआ बद्दुआ लगती है, वो हिजड़ों की बद्दुआ लगती है, वो कब्रों पे फिरने वाले मुजावरों की बद्दुआ लगती है, तो फौरन ये दुआ पढ़ लिया करें कि अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक। अल्लाह मैं किधर लग गई, मुझे तो जो तूने बेहतरीन खैर दी, जो अल्लाह ने किताब की आयतें कुरान की आयतें दी, जो नबी दिया, जो इल्म का तोहफ़ा दिया, ये खैर मैं लूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को किन बेकार चीज़ों में लेके चल पड़ी हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना इल्म की रोशनी आती है उतना आपकी ज़िंदगी से शिर्क तवहमात और बेकार किस्म की चीज़ें निकलती हैं। एक छोटी सी चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जितना आप तवहमात में होंगे वहमी तबाह होंगे उतना आप लोगों से डरेंगे, आपको बाबे भी नज़र आएंगे, आपको दौरे भी पड़ेंगे, कहीं जिन दिखेंगे, कभी आपको शक होगा पानी हिल रहा है, इसमें किसी ने कोई तवीज़ डाल दिया है, कहीं आपको लगेगा अच्छा आजकल घर में बहुत चीज़ें टूट रही हैं, फलां बड़े गौर से मुझे देख रहा था, ये सारी चीज़ें जो हैं दुरुस्त नहीं हैं। कुछ चीज़ें और भी लोगों से पता चलती हैं कि जो सफ़र के महीने में लोग करते हैं, मसलन बस लोग चने उबाल कर मोहल्ले में बांटते हैं ताकि हमारी बलाएं दूसरों की तरफ चली जाएं, बाज़ लोग आटे की 365 गोलियां बनाकर तालाबों में डालते हैं, कहते हैं कि इससे हर दिन के बदले में एक दिन की बलाएं टल जाती हैं और रिस्क में बरकती होती है, बस 311 या इससे ज़्यादा दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, मर्दों पे भारी समझते हैं, इस 13 अंक तारीख को मनहूस समझते हैं, कोई इसकी हैसियत नहीं। सूरह बनी इसराइल आयत 12 में अल्लाह ताला कहते हैं वजअलनल लैल वन्नहार आयतैन, हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया है, फमहौना आयतल लैली वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा, रात की निशानी को हमने बेनूर और दिन की रोशन बना दिया, क्यों ताकतली तब तऊ फजल में रब्बिकुम, तुम अपने रब का फजल तलाश करो, और वली तालम सिनीन अवल हिसाब, और ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान लो। तो याद रखिए हर दिन अल्लाह का एक तोहफा है, इनाम है, रात का आना दिन का जाना, सूरज चांद सितारे साल महीने दिन, ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये उसने हमें ज़िंदगी के तोहफे दिए हुए हैं। सोचिए जिनकी डोर बंद हो गई थी ज़िंदगी के आज से 6 माह पहले, 4 माह पहले, अब उनके लिए क्या मुहर्रम और क्या सफ़र और क्या रबी अव्वल। ना कभी ज़माने को बुरा कहिए, ना कभी किसी महीने को बुरा कहिए, और चांद के नाते से भी लोगों ने जो कुछ छुड़ा शुरू किया था अल्लाह ने वो भी वजाहत कर दी सूरह बकरा आयत 189 में, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, लोग आपसे चांद के घटने बढ़ने के बारे में पूछते, कह दीजिए ये लोगों और हज के औकात बताने का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने आसानी के लिए ये सब कुछ रख दिया, हर बंदा इससे हिसाब लगाए अपनी ज़िंदगी गुजारे, और जब कुरान समझ नहीं आता तो फिर इंसान उससे सिर्फ कुछ ना कुछ फ़ायदे लेना चाहता है और दूसरी चीज़ें नहीं लेना चाहता, बल्कि उसकी असल हिदायत को छोड़कर दूसरी तरफ जाना चाहता है, तो ये चीज़ महरूमी की है। आप देखिए कि किसी शख्स को अगर कोई कहे कि आओ मेरे से तुम डायमंड भी ले लो और शीशे भी ले लो, तो बेवकूफ़ होगा ना जो सिर्फ शीशे लेगा, अक्लमंद होगा वो डायमंड लेगा, तो हमने आज अपने इस कुरान को किन चीज़ों का ज़रिया बना रखा है? क्या हम इसकी वो सारी खैर ले रहे हैं? क्या वो सारी बरकत हम ले रहे हैं इससे? कितने लोग हैं जिसको समझते हैं? मेरे नज़दीक तो अपने लिए भी और आपके लिए भी एक ही मेयार है, नेकी का। आप कितने बड़े आलिम बन जाएं, फाजिल बन जाएं, मुफ्ती बन जाएं, लोग आपको हाजी साहब कहें, आलिमा कहें, आप ज़रा कुरान खोलिए बग़ैर किसी तर्जमे के और पढ़ के देखिए और फिर चेक करें कि आपको कितना समझ आता है। कहीं तिलावत चल रही है, आपको कितनी अपनी ज़ुबान में समझ आ रही है? अगर आप नहीं समझ रहे तो माजरत के साथ, अभी आप फिर अपने आप को कुछ ना समझें। सिर्फ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा याद करने से भी बात नहीं बनती, जब तक कि कुरान आपको एक बयान की तरह, एक उर्दू के लैंग्वेज की तरह, एक टॉपिक की तरह ना समझ आने लगे। कुरान की आयतें आएँ और आप सोच में पड़ जाएँ, मा साबक मिन हसनतिन फ़मिन अल्लाह व मा साबक मिन सैयतिन फ़मिन नफ्सिक। सूरह निसा आयत 79 में अल्लाह ताला कहते हैं, कोई भलाई जो तुम्हें पहुँचे वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई तुमको पहुँचेगी वो तुम्हारे अपने नफ्स से है। हम कब सोचते हैं? हम कहते हैं किसी की बददुआ लग गई, किसी की नज़र लग गई और इस तरह की बातें करते हैं। फिर याद रखिए कि बाज़ दफ़ा ये चीज़ें हमें शिर्क के करीब पहुंचा देती हैं और हम इस तरह के शिर्क को अपनी ज़िंदगी में इस तरह ले जाते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारा दीन बिगड़ जाता है। एक शख्स जो बुरा शगुन लेता रहा तो उसके बारे में आपने फरमाया कि जो किसी चीज़ से बदफाली पकड़ कर अपने मकसद से लौट आया उसने शिर्क किया, यानी रास्ते से हट गया, जी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये शिर्क हो गया। सहाबा ने कहा, अच्छा अल्लाह के नबी इसका कफ़ारा क्या होगा? तो कहा कि इसका कफ़ारा ये कि इंसान फिर यही दुआ कहे कि अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक वला तैर इल्ला तैरुक या वला इल्ला तैरुक वला इलाह इल्ला गैरुक। तो दुआ कीजिए कि ईमान का सौदा ना हो इन चीज़ों के ज़रिए से। अल्लाह ताला हमें तमाम किस्म की तवहमात से बचाए। सुबह सुबह फलां दिख गया तो अब तो मेरा दिन बुरा ही गुजरेगा, आंख फड़की है तो ये होगा, बाएं हाथ में है तो ख़ारिश हुई तो कुछ जाएगा, दाएं में हुई तो कुछ मिलेगा, काला रंग मनहूस है, सफ़ेद जो है बेवगी की अलामत है, पीला पहनोगे तो बीमार हो जाओगे, सबज़ जूता ना पहनो ये काबे की बेहरमत, ये रोज़े की बेहरमती हैं। ऐसे काम करने वाले बज़ाहर तो अपने आप को नेक समझते हैं लेकिन असल बात यह है कि वो अल्लाह के रहमत से दूर हो जाते हैं। यही वजूहात थी जिससे अहले किताब के अंदर जवाल आया, दीन असल तालीमात से निकल कर शगुन लेने का तस्करा बन गया। सूरत निसा 51 में आते, अलम तर इलल्लज़ीना उतू नसीबा मिनल किताब युमिनूना बिज्जिब्ति वत्तागूत। क्या तुमने इनको नहीं देखा कि जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया और वह जिब्त और तागूत पर ईमान ले आए? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारा ईमान अपने ऊपर ही रखे, ना कि हम तागूत और जिब्त पर ईमान लाएं। आज के लिए इतनी काफ़ी है, कुछ चीज़ें अगर रह गई तो बीच में गाहे बगाहे हम इंशाल्लाह इस महीने में मज़ीद देखते रहेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।